हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 26 एंड 27। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहकण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहकण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 26 एंड 27। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र और सुस्वादु शब्दों का आस्वादन करने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं,
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः
शब्दार्थ अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां अश्वत्थ अर्थात अश्वत्थ या पीपल का वृक्ष सर्ववृक्षाणां सारे वृक्षों में देवर्षीणां यानी समस्त देवर्षियों में च नारद यानी नारद मुनि गंधर्वाणां यानी गंधर्व लोक के वासियों में चित्ररथः चित्ररथ सिद्धानां यानी समस्त सिद्धि प्राप्त हुआ में कपिलो मुनि कपिल मुनि। अनुवाद भगवान कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष है जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियमित पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में भगवान कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उल्लेखित है। बाद में भी एक अन्य कपिल सिद्ध हुए किंतु वे नास्तिक थे, अतः उन दोनों में महान अंतर है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालम् भंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 10 जिसका शीर्षक है विभूति योग श्री भगवान का ऐश्वर्य। और इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के विषय में जो मुख्य मुख्य हैं वो बता रहे हैं। और आज भगवान हमें कह रहे हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। वेतु संसार में बहुत सारे वृक्ष हैं, परंतु ये जो अश्वत्थ वृक्ष है वो सबसे भिन्न है, वो साधारण वृक्ष नहीं है। अब यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि फिर भगवान ने वृक्षों में तुलसी क्यों नहीं रखा? तो वृक्ष एक अलग बात है, तुलसी तो साक्षात भगवान की प्रिया है, तो तुलसी कोई वृक्ष नहीं है, वो तो भगवान की प्रिय जो है सेविका है। तो इसी जो वृक्ष है ना जितने, यानी जो बहुत ज्यादा ऊंचे हों, बहुत ज्यादा सुंदर फल देने वाले हों और बहुत बहुत समय तक वो रहें, और इस तरह श्री प्रभुपाद जी बताते अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर है जिसे भारत में लोग नियमित पूर्वक पूजते हैं। यानी इतना महान ये वृक्ष है कि लोग इसको नियमित रूप से पूजते हैं कि भगवान की कितनी सुंदर विभूति है। जैसे दूसरे वृक्ष होते हैं वो दोपहर मतलब सुबह के समय क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं, मतलब दिन के समय वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो शाम तक यानी सूर्य अस्त होने तक वृक्षों के नीचे अगर बैठते हैं तो हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है। तो लेकिन यह जो पीपल का वृक्ष है, जो अश्वत्थ वृक्ष है, वो रात को भी ऐसे ही करता है, यानी उसके नीचे हम रात को भी यदि विश्राम करते हैं, बाकी वृक्षों में हम रात को अगर उनके साथ उनके जगह पे अगर हम लोग बैठते हैं तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर अश्वत्थ वृक्ष में के नीचे हम बैठते हैं, सानिध्य में बैठते हैं, तो फिर वो रात को भी हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही महान वृक्ष है। तो भगवान कहते हैं संसार में जो कुछ महान है वो मेरी विभूति है। आगे भगवान कहते हैं देवर्षिणाम च नारद, जितने भी देवर्षि हैं, वैसे तो देवर्षि नारद जो है उसी को जानते हैं हम लोग, वही देवर्षि हैं। ऋषि का काम क्या है? जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ऋषि के न ऋषि केश सेवनम भक्ति रुच्यते, जो अपनी इंद्रियों से भगवान ऋषिकेश की सेवा करते हैं, सेवनम भक्ति उच्चते, वही वास्तव में भक्ति कहलाती है। तो यहाँ नारद मुनि जो कि देवताओं के ऋषि हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं देवताओं में नारद विश्व भर में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वास्तव में भक्तों नारद मुनि को यह नारद मुनि या देवर्षि किस तरह से वो बने, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि उनको भगवान ने यह स्टेज प्रोवाइड की कि वो देवर्षि बन गए। उन्होंने ऐसा क्या किया था वो स्वयं अपने मुख से बताते हैं भागवतम महापुराण में। वास्तव में ये नारद मुनि हैं जिन्होंने इतना प्रचार किया है, इतना प्रचार किया, जो जो बड़े बड़े भक्त हैं वो इनके ही शिष्य हैं। और जैसे जो वेद व्यास जी हैं जिन्होंने सारे शास्त्रों का संकलन किया, सारे शास्त्रों को विभाजित किया, वो वेद व्यास जी भी नारद जी के शिष्य हैं। नारद जी अपने विषय में बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र था तो मैं इतना मतलब जहां पर मेरी माता जी काम करती थी मैं भी उनके साथ होता था, क्योंकि मैं छोटा सा था अभी, तो मैं अकेले घर पे माँ के बगैर नहीं रहता था। तो जहां पर मेरी माता जी काम करती थी मैं वहीं पर होता था। एक बार क्या हुआ कि चतुर्मास, जब चतुर्मास होता है ना, जब चार महीने वर्षा होती है, तो जितने भी ऋषि मुनि हैं वो जो सन्यासी हैं वो जब भ्रमण कर रहे होते हैं, अगर चतुर्मास आ जाता है तो वो कहीं जाते नहीं है, एक ही जगह पर स्थान में बैठ जाते हैं और वहीं पर कृष्ण कथा करते हैं। और जब वर्षा की ऋतु समाप्त होती है तब वो पुनः अपना भ्रमण शुरू करते हैं, क्योंकि वर्षा की ऋतु में बहुत सारे कीड़े और इंसेक्ट वगैरह आ जाते थे, तो जिसके कारण बहुत मुश्किल पड़ता था और कीचड़ वगैरह हो जाती रास्ते में। तो इसलिए जो ऋषिगण होते थे वो एक जगह पर टिक जाते थे। एक बार जहां पर ये नारद मुनि की माता जी जहां पर सेवा करती थी वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए और चतुर्मास चल रहा था, और ऋषि मुनियों की सेवा करके नारद मुनि की माता जी को बहुत आनंद आया। वो उन सब ऋषि मुनियों के लिए प्रसाद बनाती थी, उनको प्रेम से प्रसाद देती थी और उनको सबकी बहुत सेवा करती थी, वो बहुत खुश करती थी उनको। और जो नारद मुनि थे वो भी पहले क्योंकि माता के साथ ही होते थे वो भी सेवा करते थे। वो क्या करते थे, जब ऋषि मुनि लोग खा लेते थे ना तो उनके पत्तल उठाते थे और उनके हाथ धुलाते थे। तो एक बार क्या हुआ, नारद मुनि को बहुत ज्यादा भूख लगी। नारद मुनि उस समय उनका नाम नहीं था, लेकिन अभी हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि फिर जब भी नारद मुनि को उस समय बहुत भूख लगी तो फिर उसने बोला माता जी मुझे भी प्रसाद दे दो। तब माता ने कहा कि नहीं, पहले वैष्णव लोग खा लेंगे ना बेटा, फिर हम लोग प्रसाद खाएंगे। लेकिन नारद मुनि क्योंकि छोटे से थे, अभी पांच बरस के थे, तो उनको और भी तेज भूख लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो वो पत्तल उठा रहे थे उनमें कुछ कुछ जो थोड़ा थोड़ा प्रसाद बचा हुआ होता था वो उन्होंने खा लिया। और इसे खाने से, केवल वैष्णवों का झूठन प्रसाद खाने से उनकी उनको इतनी मतलब कृष्ण प्रेम उनका इतना जागृत हो गया हृदय के अंदर। ये वास्तव में उन वैष्णवों की कृपा ही है कि जब किसी भी वैष्णव का हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है, किसी वैष्णव की हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हो जाता है ना, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा करना चाहते हैं। क्योंकि जिस पर भगवान कृपा करना चाहते हैं उन्हें साधु संग प्रोवाइड कर देते हैं। तो नारद मुनि भी उन वैष्णवों का जुठन प्रसाद खाने के कारण उनका हृदय बहुत ही पवित्र हो गया और वो भगवत कथाओं में बहुत रुचि लेने लगा। जब भी वो सब ऋषि आपस में बैठकर भगवान की चर्चा करते थे, वो केवल वहां पर बैठ के सुनता था। इतना छोटा सा बच्चा था, ना उसे खेलना अच्छा लगता था, ना ही कहीं जाना अच्छा लगता था, बस ऋषियों के साथ बैठकर कृष्ण कथा श्रवण करने में, उनकी सेवा करने में उनको आनंद आता था। तो ऐसे 4 महीने बीत गए कथा को श्रवण करते करते करते, और जब 4 महीने बीत गए वर्षा के, तब उन ऋषियों ने बोला कि अब हम लोग पुनः भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत हमारी सहायता की। लेकिन जब ये जा रहे थे तो नारद मुनि को बहुत दुख हो रहा था, तब वो नारद मुनि को आशीर्वाद देके और चले गए। कुछ समय के बाद जब वो सब चले गए तो नारद मुनि बहुत दुखी रहने लगे कि अब तो कोई कथा सुनाने वाला भी नहीं है, क्योंकि उनको आदत हो गई थी, वो रोज ऋषियों के मुखारविंद से भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे। तो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे, उनको किसी भी चीज में आनंद नहीं आता था। वो माता को यही कहते थे कि माता जी, मुझे उन ऋषियों के साथ ही अच्छा लगता था, आप मुझे उनके साथ भेज देती थी ना। तो एक बार क्या हुआ, उनकी माता जंगल में लकड़ियां लेने गई तो एक सर्प ने उनके पैर को काट लिया और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तब नारद मुनि, जो कि अभी बिल्कुल छोटे से 5 साल के बच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मेरी माता की मृत्यु हो गई है, अब कौन मुझे खिलाएगा, अब कौन मुझे लाड़ लड़ाएगा, कौन मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा। उन्होंने यही सोचा कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मेरी एक माँ ही तो थी जिसके अंदर मेरा मोह पड़ा हुआ था, मेरी आसक्ति पड़ी हुई थी, आज भगवान ने मुझे इस मोह के बंधन से छुड़ा दिया। तो भगवान का धन्यवाद करते हुए नारद मुनि चले गए। वो बहुत बहुत उन्होंने भ्रमण किया, नदियों झीलों वृक्षों से आगे जाते जाते शहरों गांवों में सब में वो जाते रहे। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर उन्होंने क्या किया, एक ही जगह पर बैठकर वो भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते एक समय ऐसा आया कि नारद मुनि को भगवान के दर्शन हो गए। ध्यान में भगवान के दर्शन करके नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान को निहार रहे हैं, भगवान को चरणों से लेकर उनकी उनके कमर में जो गर्दनी लगी हुई थी, उनके हाथों में जो शंख चक्र गदा पद्म थे और उनके सिर पर जो मुकुट पहना हुआ था, उनके वक्षस्थल, हर एक चीज को जो नारद मुनि है वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि भगवान का वो स्वरूप जो अभी तक नारद मुनि देख रहे थे, उसी समय जो है वो अलुप हो गया, वो दिख रहा नहीं था। नारद मुनि विचलित हो गए, तड़पड़ने लगे कि वो भगवान का स्वरूप कहां गया। और वो पुनः चेष्टा करने लगे, पहले जैसे उन्होंने किया था ध्यान लगाया था, ऐसे वापस से ध्यान लगाने लगे। लेकिन अब उनके सामने वो भगवान का स्वरूप नहीं आ रहा था, तो बहुत ज्यादा दुखी हुए, रोने लगे कि अब क्यों नहीं भगवान आप मेरे सामने आ रहे हो। तब भगवान ने उन्हें आकाशवाणी के द्वारा बताया कि अब इस जन्म में आप मुझे नहीं देख सकते, इस जन्म में आप बहुत बहुत तपस्या करो, भक्ति करो, प्रचार करो, और फिर जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आप मेरे पास आओगे। यही नारद मुनि जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको नारद मुनि देवर्षि बन गए। और भक्तों, ये इतने महान प्रचारक, क्योंकि ये इन्होंने साधुओं का संग किया था। तो शास्त्र कहता है, गुरु और पारस में एक ही अंतर जान। गुरु और पारस का एक ही अंतर है क्या, पारस लोहे को सोना करे, गुरु कर दे आप समान। पारस से यदि कोई लोहा स्पर्श होगा तो क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा, पारस तो नहीं बनेगा।
लेकिन गुरु से, साधु से, संत से यदि किसी की भेंट हो जाती है, यदि वो किसी संत की शरण ग्रहण कर देता है तो वो भी संत बन जाता है, संत उसे अपने जैसा बना देते हैं। तो नारद मुनि अब ऐसे जीव हैं इस भौतिक जगत में, केवल वही हैं जिन्हें कहीं भी जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। इवन वो भगवान के लोक में भी जा सकते हैं, और जब यहाँ भौतिक जगत में भगवान होते हैं तभी जहां पर भी जिस समय भगवान होंगे ना, जैसे अभी त्रेता युग में हैं, तो सब लोग क्षमा कीजिए, तो जैसे भगवान अगर वैकुंठ में है तो वो वैकुंठ में जा सकते हैं, जब भगवान पृथ्वी लोक में हो तो पृथ्वी लोक में जा सकते हैं, जब भगवान द्वारिका में होते थे तो नारद मुनि भी द्वारिका में रहते थे, और जब भगवान हस्तिनापुर आ जाते थे तो नारद मुनि भी भगवान, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो सदैव भगवान के साथ ही रहते हैं, क्योंकि भगवान के बगैर उनको रहना पसंद नहीं लगता था, हर वक्त वो उनके मन में यही बात होती, नारद मुनि सदैव भगवान के साथ होते थे। अब भगवान की 16,108 रानियों के साथ जब भगवान समय बिता देते तो उनकी इच्छा होती थी कि हमको थोड़ी प्राइवेसी मिले, लेकिन नारद मुनि तो सदैव भगवान के पास आते रहते थे, द्वारिका में जाते थे, तो भगवान क्या करते थे, उसको नारद मुनि को भेजते थे, कोई काम के लिए भेजते थे, सुनो नारद आप जाओ हस्तिनापुर में जाके युधिष्ठिर महाराज से का हाल अहवाल जान करके आओ कि वहां सब कुशल से तो है। तो नारद मुनि जाते थे, एक क्षण में जाते थे, अभी तक भगवान है ना अपनी पत्नी से सीधी तरह से बात भी नहीं करते थे कि वो वापस आ जाते थे, फिर वापस है ना ये नारद मुनि जो है वो उनको ब्रज भेजते थे, अब जाइए ब्रज में देख के आइए माँ यशोदा आनंद बाबा सब कैसे हैं, और जैसे ही नारद मुनि जाते थे फौरन से वापस आ जाते थे, क्योंकि उनको भगवान के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। एक बार भगवान ने नारद मुनि से कहा, देखो नारद मुझे मेरे भक्तों में वही सबसे अच्छे लगते हैं जो मेरे नाम का प्रचार करते हैं, तो यदि आप भगवान मेरे नाम का प्रचार करोगे, लोगों को भगवान की भक्ति करना सिखाओगे, लोगों को मेरी ओर आकर्षित करोगे तो मुझे ज्यादा अच्छे लगोगे, मेरे साथ रहने से कोई फायदा नहीं। तब नारद मुनि ने सोचा कि अब मुझे सबको प्रचार करना चाहिए। फिर नारद मुनि सोचते थे कि भगवान को सबसे ज्यादा अच्छे वही लगते हैं जो प्रचार करते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं किसको प्रचार करूं, तो दक्ष प्रजापति, क्योंकि उनको भगवान ने यह आज्ञा दी थी ब्रह्मा जी ने कि आप सृष्टि का सृजन करने के लिए, यानी लोगों को जन्म को मनुष्यों को पैदा करो, तो दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया था। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने अपने पिताश्री से पूछा, पिताश्री हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब दक्ष प्रजापति ने कहा कि देखो पुत्रों, मैंने तुम्हें संसार में मनुष्यों के सृजन करने के लिए, मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए बनाया है, तो तुम ऐसा करो, सबसे पहले मनुष्य उत्पन्न करने से पहले, विवाह करने से पहले, क्योंकि विवाह करने से पहले आप तपस्या करके आओ, क्योंकि तपस्या करने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो बहुत ही अच्छी संतान होगी, सुशील संतान होगी, अच्छे संस्कार होंगे, तो विवाह करने से पहले आप तपस्या करो, बहुत समय तक तपस्या करने के बाद जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जब तुम शुद्ध हो जाओगे, फिर आप लोग वापस आना, तब तक मैं आप लोगों के लिए 10,000 कन्याओं को खोज के निकालता हूँ, और फिर आप जैसे ही आओगे तब मैं आप लोगों का विवाह करा दूंगा। तब 10,000 पुत्रों ने दक्ष प्रजापति से कहा जो आ गया पिताश्री, और ऐसे कहने के बाद वो सारे 10,000 जो इनकी संतानें थी वो चली गई हिमालय में तपस्या करने के लिए। और आज जब नारद मुनि किसी शिष्य को ढूंढ रहे थे जिससे कि उन्हें वो भगवान को प्रचार कर सके, जब वो वहां से गुजरे उस समय दक्ष प्रजापति के 10,000 जो पुत्र थे उनकी तपस्या समाप्त हुई थी। तो तपस्या समाप्त हुई तो अब वो घर जा रहे थे, ताकि घर पे जाएंगे और पिताजी ने ना हमारे लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढ के रखी होगी जिसके साथ हमारा विवाह करेंगे, तो ये सोचकर जा रहे थे आपस में बातें करते हुए, नारद मुनि ने देख लिया इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ है यूथ प्रीचिंग का, सारे यंगस्टर्स यहाँ पर आए हैं और अभी तपस्या करके आए, क्योंकि तपस्या करने से हृदय पवित्र हो जाता है। तो बोला अभी इनको भगवत ज्ञान, क्योंकि भगवान को सबसे अच्छे लगते हैं जो भगवान की भक्ति कराना बताते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, तो इन सबको मुझे भक्त बनाना है। तो सारे इन जो ये दक्ष प्रजापति के जो 10,000 पुत्र थे, उनको नारद मुनि ने कहा, रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? बोला, हम दक्ष प्रजापति के पुत्र हैं, हम तपस्या करने गए थे और बहुत लंबे समय की कठिन तपस्या के बाद आज हमारी तपस्या समाप्त हुई है, हम पुनः घर जा रहे हैं। तो बोला, घर जाके क्या करना है? बोला, वहां पर हमारे पिताजी ने हमारे विवाह का प्रबंध किया है, हम विवाह करने जा रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, विवाह करने जा रहे हो तुम? इस अभी विवाह करने जा रहे हो, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, पहले तुम मुझे उनका उत्तर तो दे दो। जब तुम मुझे उत्तर दे दोगे, उसी के बाद देना यह सिद्ध होगा कि तुम विवाह करने के योग्य हो अथवा नहीं हो। अगर तुम उत्तर नहीं दे सके तो तुम विवाह नहीं कर सकते। तब उन दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों ने कहा, पूछिए देवर्षि, क्या प्रश्न है? तब उन्होंने बताया कि इस भौतिक जगत में एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर से बहती है। वो कौन सी नदी है जो दोनों ओर से बहती है, आप जानते हो? तभी उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी नदी को तो हम नहीं जानते। बोला, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि वो कौन सी नदी है जो दोनों ओर से बहती है और तुम विवाह करने जा रहे हो? फिर वापस दूसरा प्रश्न किया कि एक चक्की है जो सदैव चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती है। तो बोला, इसके बारे में जानते हो आप? नहीं। बोला, इसके बारे में तो नहीं जानते, वो कौन सी चक्की है जो कभी भी रुकती नहीं है, सदैव चलती है? बोला, ये भी तुम्हें पता नहीं है और तुम विवाह करने जा रहे हो? फिर दूसरा प्रश्न पूछा, बोला, वो कौन सी जगह है जहां पर कोई जीव जा तो सकता है मगर वहां से कोई आ नहीं सकता, आप उस जगह को जानते हो? बोला, नहीं, ऐसी जगह को तो नहीं जानते। फिर इस तरह से बहुत सारे 10 प्रश्न पूछे, विभिन्न प्रकार के जो भागवत में वर्णन है, और वो सारे प्रश्नों के उत्तर जब दक्ष प्रजापति के पुत्र ना दे सके, तब उन्होंने देवर्षि नारद को नतमस्तक होके कहा कि आप बताइए कि हम क्या करें। तो फिर नारद मुनि ने कहा, विवाह करने की जरूरत नहीं है, जब तुम इन छोटे छोटे प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे सकते तो विवाह करना कितना कठिन है, उसके बाद कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तुम विवाह मत करो, तुम ब्रह्मचारी बन जाओ और ब्रह्मचारी बन के भगवान की भक्ति करो। तब उन सब ने एक मत होकर, क्योंकि हृदय पवित्र था, तपस्या की हुई थी, और उसके बाद उन्होंने सब ने नारद मुनि की बात मान ली और ब्रह्मचारी बन गए। जब दक्ष प्रजापति को पता चला कि ये नारद जो है वो मेरे सारे 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना चुका है, तो उसे बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी उसने नारद मुनि को कुछ नहीं किया, क्योंकि अब उसके पुत्र जो थे वो सही कार्य करने के लिए गए थे, तो फिर उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया नारद मुनि को उस समय। और उन्होंने क्या किया, 1,000 पुत्र और भी उत्पन्न किए। वो दक्ष है, दक्ष का मतलब होता है एक्सपर्ट, तो पुत्र उत्पन्न करने में वो एक्सपर्ट थे। उन्होंने 1,000 पुत्र और भी उत्पन्न किए और उनको, अपने पुत्रों को बोला, देखो पुत्रों, मैं चाहता हूं कि आप विवाह करो और संसार में मनुष्यों को उत्पन्न करो, लेकिन उससे पहले आपको तपस्या करनी है, आप जाइए तपस्या करने के लिए, और कुछ समय के बाद जब आपकी तपस्या समाप्त हो जाएगी तब मैं आप सबका विवाह करा दूंगा। तब नारद मुनि जब भी वो आ रहे थे तपस्या करके वापस आ रहे थे, तब उनसे भी पूछा कि अब आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला, तपस्या कर ली है, अभी हम विवाह करने जा रहे हैं हमारे पिताजी की आज्ञा के अनुसार। बोला, आप विवाह करने जा रहे हो, आपको पता है आपके पहले 10,000 भाई भी थे जो कि है ना विवाह करने के लिए तपस्या करके फिर आ रहे थे? बोला, हाँ पता है। तो बोला, वो क्यों नहीं विवाह किया उन्होंने? तो बोला, ये हमें नहीं खबर। तो बोला, आप छोटे भाइयों, आपके 10,000 बड़े भाई हैं, उन्होंने एक निर्णय किया कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए, और आप उनके अनुज होकर अपनी बुद्धि से दूसरा निर्णय कर रहे हो कि हमें विवाह करना चाहिए। अगर उन्होंने ये सोचा है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए तो जरूर उन्होंने इससे भी बेहतर कोई अपने लिए कार्य चुना होगा जिसके लिए जो वो कर रहे हैं। तो बोला नारद मुनि वो क्या कर रहे हैं। तो बोला नारद मुनि ने कहा वो भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा, तो जो तुम्हारे बड़े भाई करते हैं तो आप लोगों को भी वही करना चाहिए। विवाह करने के लिए मत जाओ, विवाह करने से बहुत झंझट होता है। तब नारद मुनि ने उन 1000 पुत्रों को भी ब्रह्मचारी बना दिया। जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि सारे पुत्र ब्रह्मचारी बन गए हैं तो दक्ष प्रजापति को बहुत बहुत क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने नारद जी को यह श्राप दे दिया कि तुम कहीं पर भी 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे, क्योंकि जहां रुकते हो वहीं पर प्रचार करते हो और हमारी संतानों को ब्राह्मण बना देते हो। आप कहीं पर एक जगह पर बहुत देर टिकते हो तभी तो प्रचार करते हो, अभी कहीं पर भी तुम ज्यादा देर टिकोगे नहीं तभी तुम कभी प्रचार कर ही नहीं सकोगे। तो नारद मुनि ने कहा, दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं कहा, बस इतना ही सोचा कि ये भगवान की कृपा है, क्योंकि पहले मैं एक जगह पर बैठ के इतनी देर तक एक ही लोग को है ना प्रचार करता था, अभी तो मैं प्रवीण जी का आचार्य हर जगह पे क्षण क्षण में जाता रहूंगा और भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करता रहूंगा और भगवान को बहुत प्रिय हो जाऊंगा। तो ये नारद मुनि है जिनकी कृपा से अनेकों अनेक शुद्ध भक्त बने, नारद मुनि के शिष्य बने प्रहलाद महाराज, जिनकी कृपा से नरसिंहदेव भगवान ने अवतार दिया, नारद जी की कृपा से शुद्ध भक्त बने ध्रुव महाराज, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे उन्होंने शुद्ध भक्त बनाए। तो इसे भगवान कहते हैं देवर्षि नाम से नारद, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। और आगे कहते हैं गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्व जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर गाना गाते हैं भगवान देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। और जब भौतिक जगत में भगवान का अवतार होता है तो भगवान जब भी कोई लीला करते हैं, जब भी कोई कार्य करते हैं, तो गंधर्व लोग जो हैं वो आकाश में खड़े होकर गंधर्व अप्सराएं वो सब नृत्य करती हैं, गाना गाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उनमें जो चित्ररथ है वो बहुत ही सुंदर गाते हैं और बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। तो भगवान कहते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ चित्ररथ है वो मैं हूँ और सिद्धा नाम कपिलो मुनि। कपिल मुनि जो कर्दम ऋषि और देहूति के पुत्र हैं, जब कर्दम मुनि और देहूति जी का विवाह हो गया था तब बहुत समय तक वो आकाश मार्ग में अपने विमान में घूम रहे थे और बहुत आनंद किया उन्होंने। उसके बाद उनको 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तब कर्दम मुनि ने भगवान को अपनी पत्नी को कहा कि अब मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, क्योंकि पहले भी कर्दम मुनि बहुत बहुत तपस्या करते थे और फिर विवाह करने के बाद भी उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की, लेकिन फिर अपनी पत्नी की दशा को देखकर उन्हें लगा कि विवाह किया है तो पत्नी को संतुष्ट करना भी मेरा कर्तव्य है। तो कुछ समय तक वो अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन जब 9 पुत्रियां उत्पन्न हो गई तो वो वापस जाना चाह रहे थे। लेकिन उस समय उनकी पत्नी ने कहा यदि आप भी चले जाएंगे तो फिर मेरा कौन सहारा होगा, ये 9 पुत्रियां हैं इनका विवाह कराना है और मैं भी अब बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर मेरा सहारा कौन बनेगा। तब कर्दम मुनि ने कहा, उनको याद आया कि भगवान ने हमें ये वरदान दिया था कि मैं स्वयं आपके यहाँ पर पुत्र बन के आऊंगा। फिर कर्दम मुनि ने कहा कि जब पुत्र उत्पन्न होगा तभी मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। तब कर्दम मुनि और देहूति की संतान उत्पन्न हुई कपिल मुनि, और कपिल देव ने अपनी जब वो उत्पन्न हुए तो कर्दम मुनि जो है वो उनको अपनी माता के पास छोड़ के गए। और कर्दम मुनि के जाने के बाद कपिल देव ने अपनी माता को सांख्य योग दर्शन का ज्ञान दिया और भागवत महापुराण में 2 स्कंद में बहुत ही सुंदर देहूति और कपिल देव की लीलाओं के विषय में बताया गया है। उनके पवित्र जो उन्होंने ज्ञान दिया अपनी माता को वो बताया। तो ये सिद्ध हैं, सिद्ध माना जिन्होंने सक्सेस प्राप्त की हो। तो जितने भी यहाँ पर सक्सेस प्राप्त करने वाले हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनमें कपिल देव जो है वो सबसे महान है। इसे भगवान कहते हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उच्च श्रव समश्वाना विद्धि माम अमृतोद्भवम
एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्व समश्वानां विद्धिमाम् अमृतोभवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् उच्चैश्व समश्वानां विद्धिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। शब्दार्थ उच्चैश्व अश्वानाम, उच्चैश्वसम यानी उच्चैश्व, अश्वानाम यानी घोड़ों में, विद्धिमाम मुझको जानो, अमृतोद्भवम यानी समुद्र मंथन से उत्पन्न, एरावतम गजेन्द्राणाम, एरावत यानी मुख्य हाथियों में एरावत हूँ, और नराणाम यानी मनुष्यों में च नराधिपम राजा हूँ। अनुवाद, घोड़ों में मुझे उच्चैश्वा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, गजराजों में मैं एरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते, एक बार देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया, इस मंथन से अमृत तथा विष प्राप्त हुए। विष को तो शिवजी ने पी लिया, किंतु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए जिनमें उच्चैश्वा नामे का घोड़ा था, और इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु एरावत नाम का हाथी भी उत्पन्न हुआ। क्योंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः उनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालनकर्ता होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान श्री राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है, किंतु इस युग में धर्म के हिरास होने से राजतंत्र का पतन होता है, हुआ है, अंततः विनाश हो गया है। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, उच्चैश्व सम अश्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम एरावतम गजेन्द्राणाम, यानी अमृत का समुद्र जब मंथन हो रहा था, अमृत के लिए समुद्र को मंथन किया गया था, वैसे तो देवता और दानव सदैव आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कभी आपस में संधि नहीं करते। हालांकि देवता और दानव दोनों ही एक ही पिता के पुत्र हैं, जैसे कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, एक दिति और अदिति। अदिति के पुत्र हैं देवता और दिति के पुत्र हैं असुर, और इस तरह ये दोनों जो अदिति और दिति के पुत्र हैं, वो सदैव आपस में लड़ाई करते रहते हैं, सदैव झगड़ा करते रहते हैं। कभी जो असुर होते हैं वो क्या चाहते, सदैव कि स्वर्ग का राजा हमें मिले, लेकिन क्योंकि उनकी प्रकृति असुर होती है, तो फिर वो अगर स्वर्ग पे बैठेंगे। एक बार भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को यह सलाह दी कि अगर समुद्र को, क्षीर सागर को यदि बिलोया जाएगा, उसको मंथन किया जाएगा, तो उसमें से अमृत निकलेगा, और अमृत का मतलब होता है अमना नहीं, मृत मना मरना, जो इस अमृत का सेवन करेगा वो कभी भी नहीं मरेगा। तो अमृत पीने से देवताओं की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अब समुद्र को मंथन करना था, उसके लिए देवताओं की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तो भगवान ने देवताओं से कहा कि दैत्यों का जो राजा है बलि,
उसको आप जाके समझाओ कि अगर राक्षस और देवता दोनों मिलकर अमृत समुद्र को मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और अमृत को आधा आधा करेंगे। तब सारे देवता मिलकर महाराजा बलि के पास गए और उनसे निवेदन किया कि अभी हमको, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनना है, तो हमें समुद्र को मंथन करना होगा और हमें दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, देवताओं को और असुरों को। तब महाराजा बलि को भी ये बात अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक तो शुक्राचार्य उनको जीवित कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि कभी शुक्राचार्य नहीं हो तो भी राक्षसों के पास इतना पावर तो हो कि वो कभी मरे नहीं, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वैसे भक्तों, कोई भी भौतिक जगत में ऐसा जीव नहीं उत्पन्न होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिसने जन्म लिया है उसे अवश्य मरना पड़ता है, परंतु अमृत पीने के बाद देवताओं की आयु बहुत 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 लंबी हो जाती है, इतनी विशाल हो जाती है कि फिर उनको लगता ही नहीं कभी हमें मरना है। लेकिन एक दिन प्रलय आती है जब सब कुछ समाप्त हो जाता है सिवाय भगवान के गोलोक वृंदावन धाम के। तो महाराजा बलि ने देवताओं का यह प्रस्ताव स्वीकार किया और देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लेकर आए और वासुकी सांप को डोरी बनाया गया और अमृत के समुद्र को मंथन किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शुरू किया मंथन करना, तो क्योंकि नीचे से कोई सपोर्ट नहीं था, मंदराचल पर्वत जो है वो नीचे टिकता किसके ऊपर, कुछ सपोर्ट नहीं था, तो मंदराचल पर्वत नीचे गिर गया और उनके हाथ पे केवल वासुकी सांप आ गया। लेकिन अब सारे देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हम आपके आदेशानुसार मंथन तो करना चाहते हैं, लेकिन मंदराचल पर्वत जो इतना विशाल है वो टिक ही नहीं रहा है, किस पर टिके आप बताओ। तब भगवान ने उस समय एक अवतार लिया, कश्यप अवतार, और कश्यप अवतार के रूप में भगवान जो है वो नीचे मंदराचल पर्वत के नीचे बैठे और उसके ऊपर मंदराचल पर्वत को रखा गया और जब हिला रहे थे, इतना विशाल कश्यप का भगवान का अवतार था और जब उसको मंथनी को हिला रहे थे मंथन करने के लिए, तब कश्यप अवतार भगवान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मेरी पीठ पर धीरे 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 हाथ से खुजला रहा है, इतना उनको आनंद आ रहा था। ये इतना बड़ा विशाल पर्वत और नीचे इतने सारे कंकर और ये कांटे वांटे लगे होते हैं और भगवान इतने विशाल हैं, इतने महान हैं कि उनको केवल इतना ही लग रहा था कि कोई प्रेम से मेरी पीठ को खुजला रहा है। और उसके बाद समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहला जो कुछ निकला, पहला रत्न जो निकला वो विष निकला। भक्तों, ये विष इतना भयंकर था कि उसका सेवन करने की तो दूर की बात है, कोई केवल उसकी गंध जो होती ना, उसकी सुगंध भी यदि किसी को आ जाती थी तो भी उसकी मृत्यु हो जाती। और जैसे ही समुद्र से विष निकला, उसी समय समुद्र के सारे जीव मरने लगे, क्योंकि उसकी गंध आने लगी। जो समुद्र के अंदर मछलियां थी, जो मगरमच्छ थे, वो सब उसकी गंध मात्र से, ये जो कालकूट विष है वो इतना भयंकर था कि कोई भी उसको मतलब उसके असर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अब सारे देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, अब आप सहायता कीजिए, हम तो अमृत को प्राप्त करने के लिए मंथन कर रहे थे, ये तो विष निकल गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस विष को पान केवल महादेव ही कर सकते हैं, आप उसके पास जाइए, महादेव से विनती कीजिए, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान विष्णु के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो स्वयं ही इसको ग्रहण कर लें? ऐसा नहीं है, वास्तव में भगवान अपने भक्तों को यश देना चाहते हैं, इसलिए सारे देवताओं को भगवान महादेव के पास भेजा। भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है जब उनके शुद्ध भक्तों को यश मिलता है,
और वैष्णवानाम यथा शंभु। शिव जी भगवान के बहुत ही पवित्र परम पवित्र वैष्णवा हैं, तो भगवान चाहते थे कि उनको यश मिले, इसलिए सारे देवताओं को महादेव के पास भेजा। सारे देवताओं ने महादेव के साथ याचना की कि महादेव, हम समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत की प्राप्ति करने के लिए, परंतु अमृत प्राप्त होने से पहले ही विष प्राप्त हो गया है। और भगवान विष्णु ने कहा है कि आप अवश्य हमारी सहायता करेंगे। जब महादेव ने इतना सुना तो उन देवताओं पर कृपा करने के लिए उन्होंने विष को स्वीकार कर लिया। ये है वैष्णवों की क्वालिटी। जो वैष्णव होते हैं, जो दूसरों को सुख देने के लिए स्वयं भी दुख स्वीकार कर लेते हैं, वो वैष्णव की सबसे बड़ी यही क्वालिटी है कि वो यही चाहते हैं बाकी सब सुखी रहें। इसके बदले में यदि मुझे दुख पहुंचता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हमारी यह स्थिति है कि हम दूसरों को दुखी देखकर और भी ज्यादा आनंदित होते हैं। ये वैष्णवों का लक्षण नहीं है। इसलिए कहते हैं, वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रहे। जिसको दूसरे के दुख का एहसास है कि भौतिक जगत में सब लोग कितने दुखी हैं, जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक तो उन्हें कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो दर दर जाकर भगवान की भक्ति के विषय में सबको सुनाते हैं। जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जाते थे प्रचार करने के लिए, तब सबसे हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर कर दांत में तिनका दबा के कहते थे, बस आप एक बार भगवान के पवित्र नाम का जप करो, हमें उसके बदले में भले हमें मारो, हमें धिक्कार दो, भले हमारे ऊपर कितना ही बड़ा अत्याचार करो, लेकिन एक बार भगवान का नाम ले लो। तो हमें भी हर किसी को भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, भगवान के पवित्र संदेश को सबको देना चाहिए, ताकि जीवों का कल्याण हो सके। जिस क्योंकि इसी से केवल जीवों का कल्याण संभव है कि जो लोग भगवान की कथाओं को श्रवण करें, भगवान के पवित्र नाम का जप करें। तो महादेव शिव ने जब देखा सारे देवता बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो उन्होंने इस हलाहल विष को ग्रहण करना स्वीकार किया। परंतु जब वो ग्रहण कर रहे थे, उस समय उन्होंने सोचा कि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं, अगर ये विष मैंने पी लिया तो फिर मेरे हृदय से गुजरते हुए जाएगा और हृदय में भगवान को कितना कष्ट होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने हृदय में बैठे हुए भगवान को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तब महादेव ने उक्ति सोची, एक तरकीब निकाली कि इस विष को उन्होंने कंठ में धारण कर लिया, और जैसे ही विष पूरा उनके कंठ में धारण हो गया, तब उनका पूरा जो कंठ है वो नीला हो गया, इसलिए उनका नाम आया नीलकंठ। तो इस तरह जब विष जो है वो महादेव ने पी लिया, उसके बाद वापस से जो देवता हैं और असुर हैं उन्होंने मंथन शुरू किया, तो विभिन्न प्रकार की विभिन्न वस्तुएं, अमृत से पहले ही बहुत सारी चीजें निकली, जैसे कौस्तुक मणि निकली और लक्ष्मी महारानी निकली, और इसके साथ ही एक हाथी निकला। एक हाथी ऐसा था जिसकी 5 सूंड थी, बहुत ही सुंदर विशाल श्वेत रंग का हाथी था, और वो निकला। तो भगवान के वो ऐसा हाथी था जो कि आकाश में उड़ सकता था और बहुत ही विशाल था। तो मतलब स्थिति के अनुसार वो बड़ा और छोटा हो सकता था, अलग अलग है ना गति से वो चल सकता था और उड़ सकता था। तो महाराज इंद्र जो कि देवताओं के राजा थे, उन्होंने ये हाथी को स्वीकार किया कि ये जो हाथी है वो मैं स्वीकार करता हूँ। और उसके अलावा एक अश्व कहते हैं घोड़े को, एक घोड़ा निकला, इसको उच्चैश्रवा कहते हैं, बहुत ही सुंदर एकदम अद्भुत घोड़ा था, वो भी वायु में उड़ता और बिल्कुल ही मन की गति से चलता था। तो ये भगवान कहते, ये जो दोनों पशु थे हैं तो हाथी और घोड़ा, परंतु ये क्योंकि अमृत के समुद्र से, ये जो समुद्र मंथन के समय निकले हैं, तो ये बहुत ही इस घोड़े की क्वालिटीज जितने भी कैटेगरी हैं उनमें सबसे महान क्या है, उच्चैश्रवा, और जितने भी हाथियों की कैटेगरीज हैं उनमें सबसे महान क्या है, ऐरावत, क्योंकि ये समुद्र के अंदर से निकले हैं और इसके अंदर बहुत बहुत पावर है, बहुत ये
सुंदर है, विशाल है, बहुत तेज गति से चल सकते हैं। तो इसे भगवान कहते हैं उच्च शवा अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेन्द्राणाम और नराणाम से नराधिपम। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है कि मनुष्यों में राजा जो है वो कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं और जो राजा होते हैं वो प्रजा का पालन करते हैं। कृष्ण सदैव ये सोचते हैं कि संसार के जीव किस तरह से संतुष्ट रहे, और एक जो अच्छा राजा होता है उसका केवल यही विचार होता है किस तरह से मैं अपने प्रजा का कल्याण करूं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दैवी गुण के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने अपने राज्य के पालन करता होते हैं। वो जो दैवी गुणों से नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि पहले जमाने में ऐसे नहीं होता था कि बस आप चार लोग खड़े हो जाएं, उनके अंदर क्वालिटीज हो या ना हो, जिसको ज्यादा वोट मिल गए तो वो राजा बन गया। नहीं, ब्राह्मण लोग जो होते थे वो लोगों के गुणों को देखते थे, जो भी राजा के पुत्र होते थे उनके गुणों को देखते थे कि क्या उनके अंदर ऐसा गुण है कि उनको राजा बनाया जाए। फिर जब वो देखते थे, जैसे जब शांतनु महाराज की मृत्यु हो गई थी उस समय धृतराष्ट्र ज्येष्ठ पुत्र थे, लेकिन जब सबने देखा कि ये तो नेत्रहीन है, वो थोड़े ना राज्य संभाल सकेंगे, राज्य संभालने के लिए तो कितनी योग्यता चाहिए होती है, कितनी शूरवीरता चाहिए होती है, तो नेत्रहीन भला राजा कैसे बन सकता है। तो इसके कारण पांडव महाराज भले छोटे थे लेकिन उनको राज्य मिला था। इसी तरह जब दशरथ महाराज ने यह विचार किया था कि मुझे राजा बनाना है श्री राम जी को, तब वो अपने गुरु महाराज वशिष्ठ के पास गए थे और उनसे पूछा था कि मैं राम को राज्य सौंपना चाहता हूँ, आपका क्या विचार है। तब वशिष्ठ मुनि ने बोला था कि आप राम को राजा बनाना चाहते हो महाराज, इसमें सोचने की क्या बात है। राम के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक महान राजा के अंदर होते हैं, तो कल का करे आज कर, इतना शुभ काम है राम को राजा बनाना है, उसमें देर मत करो, जल्दी से कर लो। हम भी राम को राज्य सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी इतिहास में भागवतम में कथाएं हैं, जब महाराजा अंग की मृत्यु हुई तो उस समय उनका कोई पुत्र जो था वो था नहीं, तो उनके शरीर में से जो महाराजा बेन निकले थे उनको ऋषियों ने ही नियुक्त किया था राजा। हालांकि ऋषि जो है, क्योंकि उस समय बहुत उत्पात खड़ा कर दिया था, जो अब राजा नहीं था सिंहासन पर, तो जिसके कारण चोर लुटेरे जो थे उन्होंने बहुत उत्पात खड़ा कर दिया था। तो फिर ऋषियों ने सोचा कि महाराजा अंग के शरीर में से ही हम जो है ना वो राजा निकालते, तो बेन जो निकले थे तो वो इतने अपराधी थे कि जैसे उनको महर्षियों ने नियुक्त किया, राजा बना दिया, तो उनके अपराधों को क्षमा कीजिएगा। ऐसे है कि एक महाराजा थे अंग, उनकी एक पत्नी थी जो बड़ी दुष्ट थी। वो महाराजा तो बहुत ही अच्छे थे, वो सही तरह से राज्य करते थे और अपने प्रजा को बहुत प्रसन्न रखते थे, लेकिन उनकी जो संतान थी उनका नाम था वेन, वो बहुत ही दुराचारी थी, क्योंकि उनकी पत्नी अपनी माँ के ऊपर ही है ना, उनका जो पत्नी ननिहाल है ना वो बहुत दुराचारी था, जिसके कारण वो महाराजा वेन भी बहुत दुराचारी उत्पन्न हुए थे। लेकिन जब महाराजा अंग की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मणों ने वेन को राजा बना दिया था, बस क्योंकि अभी उनका एक ही पुत्र था, तो उन्होंने सोचा ब्राह्मणों ने कि अभी क्योंकि कोई भी राज सिंहासन पर बैठा नहीं है और कोई दिख रहा भी नहीं है, तो वेन क्योंकि महाराजा का पुत्र है तो जब इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा, अभी दुराचारी है लेकिन सही हो जाएगा। लेकिन जैसे उसको सत्ता प्राप्त हो गई, राज्य प्राप्त हो गया, तो वो और भी उत्पात खड़ा करने लगा, और भी ज्यादा लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा। फिर सारे ऋषियों ने मिलकर उसको मंत्रों से उसका वध कर दिया। मतलब तब ऐसा होता था कि अगर कोई राजा जो है वो अपने राज्य को, प्रजा को सुखी नहीं रखता था और अत्याचार करता था या गलत कार्य करता था, तो ऋषि मुनियों को या ब्राह्मणों को इस बात का अधिकार होता था कि वो उठा सकते थे उसको, सीट से हटा सकते थे अगर वो बात नहीं मानता था। पहले उन्होंने, बहुत ब्राह्मणों ने उसको समझाया, लेकिन जब वे नहीं समझ रहे थे तो उनको मार डाला। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं नराणाम से नराधिपम के मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान श्री राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण। इसलिए वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो राजा जो था वो जिस तरह भगवान कैसे सबकी सुरक्षा के विषय में सोचते हैं, सबके विषय में चिंता करते हैं, सबको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह राजा समस्त प्रजा का कल्याण करते थे। किंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ है, अंततः विनाश हो गया है। अब राजतंत्र बचा नहीं है, किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी होते थे। लोग जो है वो धर्मात्मा राजाओं के अंडर में रहकर बहुत प्रसन्न होते थे, और जो राजा शुद्ध होता था तो जो प्रकृति है वो सारी जो वस्तुएं हैं वो बहुत ही सुंदर रीति से देते थे। लेकिन इसी तरह हम लोग अभी पढ़ रहे थे, महाराज वेन जब राजा बने थे ना, तब सारा प्रकृति ने सब कुछ देना बंद कर दिया था। न अनाज उग रहा था, न फल ला रहे थे, न फूल खिल रहे थे, पूरा बंजर बन गया था। तब महाराज वेन के शरीर को जब बिलोया गया था, ये मैं बता रही थी ना, महाराजा वेन के शरीर में से महाराजा पृथ्वी का जन्म हुआ था। और जब महाराजा पृथ्वी आए थे, और वो क्योंकि भगवान की शक्तियां विच अवतार थे, तो उनके आने से पृथ्वी ने जो कि गौ के रूप में उनके पास आई थी और सारी वस्तुओं को प्रदान किया था। पहले पृथ्वी माता बोल रही थी कि मैं इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि सारे लोग जो है वो बहुत अत्याचारी हो गए हैं, और इतने अत्याचारी हो गए हैं, मैं उनको मैं फल फूल अनाज देकर संतुष्ट नहीं करना चाहती हूँ। तब महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी से कहा था कि आप तो माता हो ना, आपका कर्तव्य है आप सबको अनाज दो और दो। तब उन्होंने कहा जब पुत्र ही अत्याचारी बन जाता है ना, तो माता के हृदय में भी उसके लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए मेरे हृदय में भी इन अत्याचारियों को खिलाने की इच्छा नहीं उत्पन्न हो रही है, अभी मेरे अंदर से कुछ उपज हो ही नहीं रही है। फिर जब महाराजा पृथ्वी ने उस गौरूपी पृथ्वी को दोहा था और सारे ब्राह्मणों को इत्यादि को सबको बुलाया था, उसके बाद पृथ्वी ने बहुत ही सुंदर अनाज फल फूल सब कुछ बहुत प्रचुर मात्रा में देना शुरू कर दिया था, और सारी प्रजा बहुत बहुत संतुष्ट हो गई थी। इस कथा को हम भागवत महापुराण में पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।